इसलिए शब्द प्रमाण ही सबसे शास्त्र सबसे इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। हम न्याय भी कहते हैं, हम न्याय माने गुरु परंपरा में पहले से जो आ रहा है ब्रह्मा जी से लेकर के आज तक। गीता में कोई चीज प्रक्षिप्त नहीं है, कोई भी आदमी उसमें दो एक श्लोक पढ़ते हैं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? हमारे गुरु परंपरा में सबसे पहले बतलाया जाए इसमें इतने श्लोक हैं, कौन कौन श्लोक हैं, उसकी प्रतिलिपि होती आई है और आज भी वैसा ही चल रहा है। इसमें कोई यदि इधर से कोई घटा बढ़ा दे तो मान जाए, घटाया बढ़ाया हुआ हम नहीं मानेंगे, हम किसको मानेंगे? हमारी गुरु परंपरा ने जिसको वेद परिषद शास्त्र को स्वीकार किया। ये हैं चार वेद, हैं चार कौन-कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद हैं तीन। एक ही वेद है अथर्ववेद, ही वेद है। इसी को ब्रह्मा जी ने पढ़ाया अपने पुत्र को, वही वेद प्रमाण्य है, किंतु पीछे से व्यास जी ने इसको तीन खंड और बना दिया, उसी को विषय के अनुरूप लेकर के बना दिया। जो बाकी रह गया वो अथर्व का लाया और बाकी जिसमें स्तुति उसमें से निकाल कर अलग की वो शाम हो गया। यज्ञों का विधान विधेय ये सब और उसके लक्षण इत्यादि सब बतलाए, ये यजुर्वेद हो गया और
जिसमें मंत्र प्रधान है
तो ये ऋग्वेद, सामवेद, ये तीन बने और जो बाकी रह गया वो तब का ये चार वेद। इसलिए वेद त्रय कहते हैं, ये तीनों ही वेद हैं। इसके बाद में महाभारत और रामायण है और उपनिषद हैं। ये सब प्रमाणों में गुरु परंपरा ने हमारे श्रीमद्भागवत को प्रमाण श्रेष्ठ माना, अमाउल प्रमाण, मूल प्रमाण, सब जो एक कहते हैं, किंतु भागवत जो कहेंगे वही प्रमाण। ये प्रमाणों में अमल प्रमाण है, इसलिए क्यों इसमें कोई दोष नहीं। दोष कितने होते हैं? भ्रम, हम लोगों को भ्रम है क्योंकि वो कुछ कहेंगे। नाना ऋषि लोग हैं, नाना प्रकार के मत रखते हैं, उनमें भ्रम हो सकता है। व्यास ने में भ्रम नहीं, क्यों? वो भगवान है नारायण, उन्होंने इसको प्रकाशित किया। बैठ जाओ, बैठ बैठ ऐसे जितने आदमी हम खाते हैं, हम जब चटके करते हैं तो सब अपवित्र है, किंतु गाय का गोबर अपवित्र है, वो पवित्र करना। क्यों? हम लोग उसको निर्णय नहीं, वेदों में भगवान ने निर्णय करते हैं, उसके सब क्रिया के कारण ही। बहुत से ऋषि आचार्य लोग हो गए, अपना अपना मत बनाया, पूर्ण नहीं। व्यास जी ने इस भागवत को प्रकाश किया कि कई कई प्रकार श्रुतियों में और पुराणों में, श्रुतियों में और उपनिषदों में यदि झगड़ा हो तो किसकी बात मानेंगे? पुराणों में उपनिषद में हो तो श्रुति को, किंतु भागवत को सर्वोच्च सर्वोच्च सबसे ऊपर जिसमें भ्रम नहीं है, प्रमाद नहीं है, कर्णपाठ माने इंद्रियों की अपुटता, बस यहां से श्वास दूर से सुनो। कल महाराज जी ने ये बात, हमने वो बात कही नहीं, उसको न सुन करके उसने कहा घर जाना मत, उसने सुना घर जाना, महाराज जी ने तो कहा घर जाना, किंतु मत वाला है जरा धीरे से कहा, वो उसको नहीं सुनाई। तो वो ये इंद्रियों का पटता है, हम पीछे नहीं देख सकते, आंखें आंखों को नहीं दे सकती, इसलिए हम प्रभात भ्रम में जैसे उठे नींद से, एक बार बात को दूसरी बात, कोई मदिरा पान कर लिया एक बात को दूसरी बात से,
सर्पों में रज्जु
भ्रम प्रमाद कर्णपाश कर्णपाठ और विप्रलिप्सा में वंचन करने की इच्छा। शंकराचार्य जी ने वेदों का चार प्रमाण दिया, अहम ब्रह्मास्मि सर्वं खलु इदं ब्रह्म
प्रज्ञानं ब्रह्म
प्रज्ञानं ब्रह्म तत्त्वमसि। उन्होंने क्या किया, वंचन के वंचन अपने मत को प्रतिष्ठा करने के लिए उन शास्त्र के वचनों का दूसरा अर्थ कर तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, उन्होंने ये किया तत्त्वम तुम भी वही हो, किंतु इसका यथार्थ अर्थ यह नहीं है, लोगों को धोखा देने के लिए अपने मत का प्रचार करने के लिए इन्होंने सुना तस्य तम अस्ति तुम उसके हो, ये इसका अर्थ होगा। अतः प्रभु ही एकमात्र मालिक है, हम उसके, गीता में भी ऐसा बताया ना, वैदेश्य सर्वै अहमेव वेद, वैदेश्य सर्वै वेदों में संशय मैं ही जानते, तुम और हम हैं एक ही हो गए, वही यदि हो गया तो तुम क्यों नहीं जानता ब्रह्म के साथ, इसे लोगों को धोखा दिया, इसलिए अपना वेद विरुद्ध मत प्रचार करना, क्यों भगवान ने कहा कि विषय लोगों को, ऐसे जो दुष्ट लोग हैं असुर लोगों को प्रवचना करने के लिए, तुम ही ब्रह्म है, ब्रह्म कोई दूसरा नहीं, इसलिए बहकाने की ये वंचन इच्छा। इसलिए और भी जैसे अहम ब्रह्मास्मि मैं, इसका अर्थ क्या लगाया, कहीं कहीं पर शास्त्रों में अधिकांश रूप में साहित्य में कुछ उत्प्रेक्षा होती है, अर्थात तुम सिंह के बच्चे हो, महान प्रताप सिंह था, तो उसके नाखून थे, चार पैर थे, जानवर का वो तो गुरु के लिए है, तुम गधे हो, किस लिए गधा कहा
गया,
बुद्धि कम है, इस वो गधा जैसा काम नहीं हो गया, तुम नहीं हो गई,
शरीर नहीं,
वो शरीर नहीं हुआ, किंतु कहा तो तुम भी आम ब्रह्मास्त्र में ब्रह्म मने वो चेतन है, विभु है, और मैं अनुचेतन, इसके कारण यथार्थ में कभी भी जीव ब्रह्म नहीं हो सकता है ना, न तत् समस्त अधिकस्य दृश्यते
न तत् सकालजं करणं च विद्यते,
भगवान के समान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, कृष्ण के समान कोई कृष्ण हो सकता, जब द्वारकाधीश और मथुरेश कृष्ण ही उनके बराबर नहीं है, ब्रजेंद्रनंदन के समान एक ही तत्व होने पर भी तो साधारण मनुष्य कृष्ण नहीं आएगा, ये तत्व सर्वं खलुदं ब्रह्म सभी ब्रह्म, शंकराचार्य ने इसका उल्टा अर्थ लगाया, सभी जितने हैं ब्रह्म हैं, ब्रह्म माने यहाँ पर चेतन पदार्थ हैं, ये अर्थ है। ब्रह्म किसको कहते हैं, ब्रह्म को उतना प्रसन्न आते हैं इत्यादि नहीं सुनो। आठ गुण जिन हैं उनको प्रभु कहते हैं। जीवन और मन की समस्या को जो जानते हैं और हल कर सकते हैं उनको ब्रह्म कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर सब कुछ ब्रह्म है, इसका मतलब जैसे स्वरूप से वो चिन्मय बस इतना। इसलिए वचन की इच्छा से भी वचन का उल्टा तो वो प्रमाण नहीं। इसलिए अविद्या वृत्ति से हमारे गुरु परंपरा की धारा में जिन जिन वेदों को जिन जिन शास्त्रों को प्रमाण के रूप में लिया गया उसमें श्रीमद् भागवत प्रधान ये सब मात्र प्रमाण। ये जो कहेंगे वही हम करेंगे। इसलिए ईश्वर के संबंध में क्या कहते हैं, जीव के संबंध में वो क्या कहते हैं, जगत के संबंध में क्या कहते हैं, ये तीन ही चीज है। इतनी तो वस्तु गुण है। ईश्वर के संबंध में वेद पुराण और अन्याय में पाने वाले जो हमारे शास्त्र है शब्द प्रमाण वो क्या कहते हैं वही हमारे लिए। दूसरा नहीं, जीव के संबंध में जो कहेंगे वो हमारे लिए और संसार के संबंध में जो कहते हैं। शंकराचार्य जी यहाँ पर गड़बड़ करते हैं, कहते हैं सर्व खलित ब्रह्म सभी ब्रह्म है, तो फिर वो कहते हैं जीव ब्रह्म सप्तम जगन मिथ्या, ये जगन मिथ्या है तो फिर वो कहते हैं सर्व खलित ब्रह्म सभी ब्रह्म है तो सभी सत्य है, ब्रह्म सप्तम जगन मिथ्या और जगत मिथ्या है तो फिर ये सर्व खलित ब्रह्म कैसे हो गया, उनके बातों में सामंजस्य है। इसलिए हम उनकी बात को नहीं मान करके हम शास्त्रों के और भागवत के विषय तो ये हुआ पहला हुआ प्रमाण। जिनके द्वारा ज्ञातव्य वस्तुओं का प्रतिपादन होता है उसे कहते हैं प्रमाण। जो कुछ हम जानना चाहते हैं हमारे लिए जो ज्ञातव्य है जो हमारे लिए जानने चाहिए उस विषय में जो प्रतिपा जिसके द्वारा प्रतिपादित होता है वस्तु का उसको कहते हैं
प्रमाण।
और प्रमाण के द्वारा जिस चीज वस्तुओं का प्रतिपादन किया जाता है उसे कहते हैं
प्रमेय।
अब हम लोग प्रमेय पर चलते हैं। प्रमेय में पहला है प्रश्न यदि कुछ हो
सर्वशक्ति
सर्वशक्ति
चेतन जो वस्तु में है जीवात्मा परमात्मा इत्यादि और भक्ति इत्यादि के संबंध में ये प्रत्यक्ष कोई काम नहीं करेगा। इसलिए अचिंत्या फल जो भाव अचिंत्य जो भाव है चिन्मय जो भाव है सच्चिदानंद उसमें प्रत्यक्ष कोई काम नहीं करेगा। इसलिए ये सब भ्रम प्रमाद करना पापों की प्रलिप्सा इत्यादि दोषों से युक्त होने के कारण ये सब प्रमाणित स्वभाव से दोष
प्रत्यक्ष जो तात्कालिक सत्य जी बोले बोलेंगे।
इसलिए यदि हम न्याय के अनुगत ये हो तो उसको लिया अवश्य है और भी लौकिक विषय में प्रत्यक्ष कुछ लिया है पारमार्थिक विषय में तो कोई काम ही नहीं। ब्रह्मा तक आते हैं कि ज्ञान अंत ही हो जाए आंखों से कृष्ण को देखा किंतु उनको नहीं देख सकते इसलिए इस विषय में आज ही का बाकी सब तैयार होकर क्या आज सब तुम लोगों ने सुना, कल से सब तुम लोग इस विषय को देख करके एक एक आदमी से प्रश्न करेंगे वो बताएंगे। जैसे भूसा को कूटने से चावल या अन्न खोजता है कोई, भूसा यदि लाख वर्ष तक कूटे, लाख मन भूसी भूसा, तभी एक दाना भी कण का नहीं आएगा। जिसमें कण है चावल है उसको थोड़े प्रयास से उसे अन्न निकल आए, इसमें है ही नहीं। तो आत्मबोध से जीवों का कोई भी कल्याण नहीं होता। आत्मबोध माने क्या है?
मैं कौन हूँ?
मैं चिन्मय तत्व हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। मैं क्यों? जब ही भगवान को जान लिया तो अपने आप सब जगत को तस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम्। सूर्य यदि निकले तो सूर्य को भी देख सकते हैं, समस्त जगत को देख सकते हैं अपने को देख सकते हैं। और सूर्य न निकले तो लाइट जला करके हम देखेंगे, इस लाइट के द्वारा सूर्य को नहीं देखेंगे। आधी रात में यदि हमने लाइट जलाया 1,00,000 तो उसे सूर्य नहीं देखेंगे और जगत को भी संपूर्ण रूप में नहीं देख सकते। इसलिए सूर्य के प्रकाश से सूर्य को अपने को और दूसरों को जैसे देख लेते हैं, वैसे भगवान को जानने से तस्मिन् विज्ञाते, उनको जानने से उनको भी जानना हो जाएगा, अपने को भी जानना होगा और दूसरों को भी जानना होगा। भक्ति के द्वारा जो भगवान को जानते हैं वो तो सबको जानते हैं, और ज्ञानी कर्मी योगी तपस्वी ये भगवान को एकांश में भी नहीं जानते। वो हाथी के समान, जैसे चार अंधे थे तो चार अंधे रास्ते में खड़े थे, किसी ने कहा कि हाथी जा रहा है, भाई कैसा हाथी है? तो एक आदमी ने कहा कि देखो ये पूछ पकड़ो, देखो ये हाथी का पूछ है, हाथी है। एक को कहा जैसे ये एक कान पकड़ो, देखो ये हाथी है, और कहा ये कान सूल पकड़ो, और एक को कहा दांत, और एक को कहा कि कान। जो कान पकड़ा हुआ है हाथी सूप के समान है, और दांत पकड़ा उसने मूसल के समान हाथी होता है, और पैर जिसमें का जो खंभे के समान में हाथी होता है, और पूंछ पकड़ा
सांप के भांति,
कैसा
सांप,
सांप के समान हाथी होता है। और जिसकी आंख थी उसने देखा, उसने हाथी को देखा, देखा क्या उसका मुंह के अगले भाग में सूंड होता है, उसके चार पैर होते हैं वो खंभे के समान होते हैं, कान के समान उसका सूंड होता है, सूंड के समान उसका कान होता है, और सब के समान में पीछे यह सब मिलाकर के काला जीव जंतु जो इतना लंबा चौड़ा होता है इसको हाथी कहते हैं। तो ज्ञानी योगी कर्मी तपस्वी ये सब अपने अपने अनुसार से ब्रह्म की परिभाषा देते हैं, किंतु वो अद्भुत। और भक्त लोग कहते हैं नव किशोर नटवर उपेश व्यंकर ये ब्रह्म है। आंखों में बंसी, पत्थरों में बंसी विराजमान रही है, मोर मुकुट झलक रहा है, प्रातिव्य मेघ के समान श्यामल वर्ण जिनका है, विद्युत के समान जिनके पीताम्बर है, वनमाला पहने मुस्कुराते हुए बंसी वादन कर रहे हैं, ये पद नराकृति इन्हीं के अंग ज्योति को ब्रह्म कहते हैं। इन्हीं का एक अंश जो जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप से परमात्मा कहते हैं, साक्षी नियम कालो है। इन्हीं का एक रूप है जो विष्णु के रूप में है। उनका एक और प्रकाश है जिसको कर्णाभिशाही कहते हैं। उनका वैभव रूप है वो है नारायण। उनका वैभव एक और स्वरूप है जिसको कहते हैं बलदेव। ये सब उन्हीं के प्रकाश है। स्वयं रूप में वो परब्रह्म जो है नराकृति नटवर वेश मुरली धारण के रूप ये कौन कहता है? इसलिए भक्तों का ठीक है। तो कहते हैं जानते लोग ने कहा जान लिया जान लिया जान लिया, कुछ भी नहीं जान ठीक बहुत था। मैं क्या कहूँ, मेरे चार शरीर शीर हैं, मैं वेदों का वक्ता हूँ, समस्त शास्त्र मुझसे प्रकटित हुए, ये भागवत में उन्हीं से हुआ चतुर्श्लोकी के लिए नारद जी को नारद जी से कहता है। इसलिए मैं किंतु तो हे प्रभो, मैं हे प्रभो, प्रभु माने क्या? प्र माने प्र हो, प्र माने प्रकृति स्वरूपेण भू भवति, जो प्रकृति रूप से अपने रूप को अपने गुणों को अपने चिन्मय शरीर को उस जगत से इस जगत में प्रकटित करते हैं उनको कहते हैं प्रभु। जैसे वो है वैसे प्रकृति रूप है अच्छी तरह से परिधान उस जगत में जैसे हैं गोलोक वृंदा इस जगत में उसी रूप में वो प्रकट करते हैं उसको प्रभु ब्रह्मा जी का। ये देख रहा हूं कि हमको ये संदेह हुआ कि इस नारायण रूप में रहते हुए भी आप सबके अंतर्ज्ञानी सबके हृदय में निवास करने वाले ये आप कैसे हो सकते? आपने क्षण मात्र में वो संशय दूर कर दिया। कैसे? जितने सखा हैं ना, जितने बछड़े हैं, जितनी गठिया है, जितने उनके अलंकार है, जितने उनके स्वभाव है, काले गोरे जैसे हैं, जिसका जैसा स्वभाव है कृष्ण वैसे बने और एक वर्ष तक लीला करते हैं, ब्रह्मा जी को पता ही नहीं चला जैसे कौन से ही है वही है उन्होंने और देखा कि कृष्ण सब लीलाए। पहले हुआ संदेह बलदेव क्यों ऐसा, पहले कृष्ण अधिक प्यारे थे, सखा मैया अपने बेटे को आदर उतना नहीं करती थी उतनी कृष्ण को करती थी, अब देखते हैं कि कृष्ण को और अपने बच्चों को बराबर कर रही, गैया पहले अपने बच्चों को अधिक उतना प्यार नहीं करती कृष्ण को, किंतु अब अपने बछड़े को कृष्ण को बराबर प्यार करती, ये क्यों? जब उन्होंने ध्यान लगाया देखा अरे ये तो कृष्ण सब बने हुए, एक मैया के दूध से तुम्हारा पेट नहीं भरता, इतना मैया बना लिया
करोड़ों मैया,
यहाँ तक कि मैया से काम नहीं चला तो गायों को भी अपनी मैया बना लिया, हमको तो कुछ मालूम नहीं पड़ा, ब्रह्मा को क्या मालूम। जब बलदेव प्रभु जानते हैं वो ना जानते उसके शरीर में जब बलदेव प्रभु भी आ गए तो ब्रह्मा अपनी बात को क्या कहे और अपने से नीचे वाले कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी वो तो मूल वाली है वो क्या है। मैं प्रभो मैं नौ मैं मेरा मैं माने मेरा मन मन सो बक्सो पा बहू से और लाड़ से, मैं कुछ नहीं समझ सकता। आपके शरीर को ही नहीं समझ सका कि आपका वैभव शरीर जो है वो कैसा है। वो शरीर को कृष्ण ने क्या क्या चतुर्भुज दिखला दिए सबको, और उसके बाद में फिर क्या दिखता है,
द्विज रूप तो पहले था,
जैसा था वैसे ही बच्चों को और गाय बच्चों को खोज रहे हैं
कवल वेत्र
और अज्ञानी बने हुए हैं, मुख सूख रहा है, कवल हाथ में नहीं हाथ में रखा, लेने की फुर्सत नहीं, मुख सूख रहा है, किधर गए मेरे सब, किधर हमारी बच्चे, एकदम भोले भाले, मैया घर में क्या कहेगी, पिताजी क्या कहे, हमारा को तुम नहीं समझ। इस प्रकार से फिर कवल हाथ में लेकर के बंसी यहाँ पर लगी हुई है, गर्म को यह सब सुखा ऐसे ब्रह्माभिधान जो करके जिस प्रसंग बसता एक किया ये बात उन्होंने वो ऐसा ही रख देते, वो फिर अपने आप जो बने हुए थे उनको छोड़ दिया और अपने आप कृष्ण बन गए और उनको निकाल दिया। ऐसा क्यों किया, क्यों किया, रसास्वादन नहीं होगा उनसे, क्यों नहीं होगा,
स्वयं तो है,
वो स्वयं है ना, वो तो लोग से इस जगत में आए हैं आस्वादन करने के लिए, वो अपने जो बने हुए हैं उनमें वो सब भाव भर दिया है, उन सब जो स्वभाव तो बन गए, उनकी जो अपनी स्वतंत्र भावनाएं हैं कृष्ण की सेवा करने की उनमें नहीं, क्योंकि वो सब विषय जाति हैं, आश्रय जाति तो है नहीं, इसलिए कृष्ण छटपट छटपट करते हुए एक वर्ष के अंदर उनके लिए एक क्षण है किंतु एक क्षण भी नहीं रह सके, इसलिए तो वो आए हैं आस्वादन करने के लिए, वो प्रेम अपने आप अपने से नहीं होता, इसलिए उनको बात होकर के कुछ दिनों में ही बछड़े और वो सब जो बने थे उसको हटा दिया और जो वास्तविक जो बछड़े और सखा थे उनके साथ में
तो एक साल तो एक 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 साल जी तब उरा की भविष्य सेवा करते थे सगाजन की सेवा करते ना कृष्ण
सब समय चिंता में मरते थे, अभाव उनको बहुत होता था,
एक क्षण के
जब उनके लिए रस नहीं, जैसे कि बच्चे सब दौड़ते हैं दौड़ तो रहे हैं किंतु वो भाव नहीं उत्सुकता नहीं है सेवा की भावना नहीं, वैसे यदि ऐसी होती तो महाप्रभु जी कृष्ण जी राधा जी का भाव लेकर के तब के माते दादाजी के भाव और अंग कांति लेकर के इस जगत में आए रसा साधन राधा जी का भाव देने की क्या जरूरत हो, तो अपने रूप से वो समझ जाते, इसलिए ऐसा नहीं, राधा जी का अपना ही महत्व है, कृष्ण यदि राधा जी बन जाएंगे तो भी उनमें नहीं उनका भाव पूरा नहीं आएगा, इसलिए उन बच्चों में जो स्वाभाविक उनमें नहीं है, इसलिए उसके आस्वादन करने के लिए फिर से उन्होंने उनको प्रकट कर दिया और अपने रूप को संभाल दिया। भगवान तो विषय है ना, इसलिए आश्रय का रूप यदि ले भी लेंगे, राधिका जी कृष्ण महाप्रभु जी बने हुए हैं आस्वादन कर, किंतु राधा जी के जो अंदर में जो भाव है वो कृष्ण बने हुए होने पर भी उनमें ना जरा मुश्किल है, इसलिए राधा जी ज्ञानी रख रहे हैं ये हमारे भाव का ये अपने ठीक कर रहा है, इसलिए गदाधर के रूप में खड़े होकर तो वो सब वाच कर गलती कर सकते हैं, हो सकता है कभी अधिक कर लेंगे, राधा जी ने कहा कि हमारी जैसा मान कर तो कृष्ण गड़बड़ा गए, उन्होंने ऐसा मान किया जब फिर वो मान में वो प्रसन्न नहीं हो गए, कभी तो राधिका कहते कि ऐसा तो हमारे अंदर का भाव नहीं है, मैं तो मान जाती हूँ तुम आप मानते रहे इसलिए तुम्हारा आर्टिफिशियल
आपने एक बार बताया था जब शुक्ला मर ब्रह्मचर्य घर में महाप्रभु बढ़ा प्रण कर रहे हैं गदा सर अंदर से बोल रहे हैं बढ़ा दिया बल जब नहीं सिखा रहे हैं आपने ऐसे बताया था
इसलिए एक बार जानते ही हो कितने ही सब में छिपे हुए हैं भाव श्लोक के अंदर में पढ़ने से नहीं मालूम कितने भाव हम लोग भी ले सनातन गोस्वामी की कृपा नहीं होती तो ये सब भाव एक एक शब्द के अंदर छिपे हैं, इसलिए इन सब महापुरुषों के हम लोग
दस मिनट दे
दस मिनट कब से साढ़े पाँच से साढ़े चार से मैं क्या कहूँ प्रभु मैं आपके इस अंग की ही जो विभूति है इसी को नहीं समझ सका इसी साढ़े तीन हाथ के शरीर के द्वारा आपके मुख में जो यशोदा जी ने विश्व ब्रह्मांड को इसमें देखा ये कैसे आप किसी वृंदावन में केवल वहां जहां पर राज हुआ था बंसी पर असंख्य गोपियां करोड़ों तो उनके दूत थे दूत का एक दूत में राधा जी दूत थे स्वरी चंद्रावली जी दूत थे स्वरी श्यामला जी हैं भद्रा जी हैं करोड़ों करोड़ों दूत एक एक दूत की ही जब संख्या नहीं हुई कितनी गोपियां वहां पर होगी तो उसी बंसी पट के अंदर में कैसे हुआ ब्रह्मा जी कहते हैं इसका समाधान नहीं कर सकता मेरे लिए इसी ब्रज में करोड़ों करोड़ गाय नंद बाबा की 9 लाख उनकी 10 लाख 11 लाख सभी लोग तो कृष्ण ऐसे को गायों को कैसे वृंदावन में एक वन में चढ़ा रहे कभी मधुबन में चढ़ा ये कैसे संभव आपके ये शरीर की बात में नहीं समझ सकता वाणी की बात रही वाणी का भी जो रूपी जो वैभव है उसको मैं भी नहीं समझ सकता आपके वाणी के क्या तात्पर्य है ये हमारे इसको दिमाग से ये सुनो एक ही आप बात करते हैं उसके हजारों माने होंगे अर्थ होंगे घर चली जाओ घर जाओ इसका क्या अर्थ होगा घर जाओ सीधा गोपिया कहेंगे जैसे घर तो ये जहां आप हैं यही तो हमारा घर है पतियों की सेवा करो गोपिया कहेंगी जो आप ही तो पति हैं और हम पति है जैसे जो पालन करता है पोषण करता है वो भी तो पति है कृष्ण ने एक ही प्रश्न के उत्तर में 9 अर्थ के रूप में 9 नौ भाव प्रेम इत्यादि के इसलिए आपकी वाणी का भाई मन नहीं समझ सकते आपने तुच्छ बुद्धि से और मन की तो बात ही है इसकी फिर मैं जानता हूं कि आपका मन वाणी और शरीर तीनों एक ही सच्चिदानंद कोई भी नहीं किंतु फिर भी इसमें भेद है ये सब मेरे समझ में नहीं और क्या और एक अर्थ किया न मे प्रभो हे प्रभो आप और मैं दोनों भी आपके ये शरीर के द्वारा जो वैभव जो प्रकाश किया वाणी के द्वारा किया मन के द्वारा किया आप भी अपनी लीला कथाओं को नहीं समझ विशेष करके आपका वैभव कौन है ब्रज के ब्रजवासी ब्रजवासी लोगों के संबंध में आप भी पूरा नहीं जान कहते हैं कि और भी इससे आगे रह गए कृष्ण स्वयं बताते हैं जैसे कहो भागनम ऐश्वर्य दे करके ऐश्वर्य से हमारा प्रेम शिथिल हो जाएगा और उनके माध्यम से तो कर ये ब्रजवासियों के जिनके लिए कृष्ण का रहे न पा रहे हम निर्वत मैं तुम लोगों का ऋणी हूं चीर काल के लिए क्यों उनके भाव इतने सुंदर सुंदर हैं इतने मधुर हैं ये कृष्ण के जो बहुत प्रकार के अर्थ वाले शब्द हैं उनसे भी अधिक इंद्र हैं कृष्ण ने कहा मैं हरि हूं दरवाजे खटखटा रहे हैं राधा जी ने कहा तुम कौन हो कौन खटखटा रहा तो कृष्ण कहा मैं हरि तो यहां पर हरि बंदर की कोई जरूरत नहीं। अरे मैं वो हरि नहीं हूं, ओ सिंह है तो सिंह की तो जंगल में रहते हैं, यहाँ क्या जरूरत है। अरे वो नहीं,
श्री हरि,
श्री हरि,
मैं घनश्याम हूँ। घनश्याम आप है तो भले आई यहाँ, यहाँ पर मेघ की क्या जरूरत है, वर्षा की कोई जरूरत, कीच हो जाएगी हम लोग फिसल जाएंगे, आप खेतों में जा करके वर्षा कीजिए जिसमें किसान को कुछ लाभ हो, कोई वर्षा की जरूरत। काले मेघ, घन श्याम, श्याम घन, काले मेघ, यहाँ क्या जरूरत। अरे वो नहीं,
कृष्ण,
मैं कृष्ण हूँ, बाबा भयंकर बस, कृष्ण माने काला सर, काले साहब को यहाँ जरूरत है, दस देगा कहीं, मैं नहीं दरवाजा तो कि आप यहाँ से आए हैं उसी वन जंगल में चले जाए। अरे मैं चक्री हूँ, चक्र आप धारण करते हैं,
भंडारा जहाँ पर
गौड़ी मंडल चले जाओ, चक्र
चक्री हूँ,
कुम्हार के घर चले,
कुम्हार की कोई जरूरत, चक्री माने होता है लाल,
चक्का चलाते
हैं, चक्का चलाते हैं अपने, हमारे घर में कोई शादी वादी नहीं है, चुक्कड़ की जरूरत नहीं है और घड़े की जरूरत नहीं, वो तो जिसके घर में शादी हो उनके घर में पधारिए, वहां पर हम पढ़ना है। इसी प्रकार से जो लोग हरि कह रहे हैं असीमा त्रिराधिकारी अपनी बातों से उनको कार्य बन गए, तो बताओ उनकी बातों में कितना माधुर्य और कितने अर्थ और क्या क्या। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपके जो भक्त हैं उनने जो श्रेष्ठ राधा जी हैं उनकी तो बात, उनकी महिमा ही नहीं जानता, वो जान सकता है राधा जी की महिमा, जब स्वयं भी कृष्ण कहते हैं मैं नहीं जानता। इसलिए आप भी मनसो बहुसो वाचो, मन के द्वारा, वचन के द्वारा और वाणी के द्वारा आप भी ब्रजवासियों की महिमा को पूरा नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं, क्यों नौ नुमायमान उनका भाव गोपियों का, आप अपना भी नहीं जानते हैं, आप अपने मन वचन और तन ये सब की बात संबंध में भी आप उतना नहीं जानते जितना गोपियां जानती हैं, और उनके लिए भी आपका ये तीनों चीज नौ नुमायमान, इसलिए तीनों का तीनों कृष्ण के तीनों मन वचन के द्वारा, बपू के द्वारा अपने ही मन वचन और बपू का महिमा ज्ञान, फिर गोपियां ब्रजवासियों की तो बात ही क्या है, और मैं ही क्या इस विषय को जानू। इसलिए प्रभु मैं थक गया, आपकी महिमा का वर्णन किसी भी स्थिति में जो कहते हैं वो कहते हैं, इसी के बाद में वो कहते हैं हम जाने बापू आप क्या, ये अनंत नदी के समान आपकी महिमा है, अनंत प्रवाहित, अनंत काल से, अनंत एक जगह से अनंत दूरी तक बहने वाली ये नदी, ये नदी कहां से निकली, ब्रह्मा जी ने देखा ये मैं कहां से, ये नाव निकला हुआ है हजारों वर्ष तक नीचे चलते 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 थक गए, कहां जाने कहां पहुंच गए, तो अभी उसका आदि नहीं, फिर ऊपर चलने लगे, ऊपर में देखा दे उसका आदि अंत उसको कुछ नहीं, उसी तरह से कृष्ण के किसी भी वस्तु का आदि अंत ये ब्रह्मा जी को भी नहीं, इसलिए कहते हैं अनुजारी ये तो धारा प्रवाह आपकी महिमा है, बलदेव जी भी नहीं, आप भी नहीं जानते अपनी महिमा, जानते हैं यशोदा जी के लाड़ पे आदमी जब होता है तो खुल जाते हैं अपनी भगवत्ता, भगवत्ता से तो जाना जाता है, हाथ पकड़ लिया यशोदा ने उत्तराख से तो हाथ छुड़ा लिया, और यशोदा जी हाथ पकड़ लिया लठिया दिखला रहे हैं, कृष्ण छिप रहे हैं इधर, उनके मजार है जो थोड़ा सा हाथ खुला करके चले जाए, सूरदास ने आके किसने कहा कि हाथ छुड़ा ही जा, तो
अच्छा
तुमको बांध दे, महिमा बल था ये कृष्ण से मिली, अपना प्रेम ही उनका ऐसा है। इसलिए कहते हैं प्रभु अब आम ज्ञान अब आदेश मान कृष्ण सर्वतम वेद थी सर्व, आप तो सभी कुछ जानते हैं मेरे अंदर में क्या क्या भावना है। तमेव जगतां नाथ, आप जगत के नाथ हैं, जगत च एक माता पिता, मैंने अपने शरीर को और इस जगत को जो मेरा है जिसमें अहमता है जो मैं आत्मा शरीर और ममता जहाँ है ये विश्व को मैंने शिक्षण किया, ये सब आपके चरणों में इसके व्याख्या।